सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व और भारत की प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
जब कोई देश अपनी भौगोलिक सीमा से पार जाकर एक राष्ट्र में तब्दील होता है तो उसमें राष्ट्र को बनाने में न सिर्फ देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले नागरिकों की भूमिका होती है, बल्कि जो एक देश की सीमा से पार करके दूसरी जगहों पर बसे हुए लोग होते हैं, जिनकी जड़ें उसी खास देश में होती हैं, उनकी भूमिका भी एक राष्ट्र को विकसित करने में हो जाती है। भारत के नजरिए से अगर हम इस पक्ष को देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा प्रवास पूरी दुनिया में है और भारत के ये प्रवासी जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं वो भारत के राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आज चूंकि प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण हम मना रहे हैं तो ओडिशा में एक विशेष प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, तो आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के महत्व और भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में आज हमारे विशेष मेहमान ज्ञानेश्वर मुले, जो पूर्व राजदूत हैं और विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम चर्चा इसी से शुरू करते हैं। जैसे कि आज सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को कल्चरल एम्बेसडर या संस्कृति के राजदूत बताया, किस दृष्टि से आप प्रवासियों की, भारतीय प्रवासियों की भारत में भूमिका को देखते हैं और इस दिन की अहमियत को आप कैसे देखते हैं?
जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी 1915 में वापस जब आए अफ्रीका से, उस दिन को हम उसका स्मरण इस प्रवासी भारतीय दिवस पे करते हैं, क्योंकि वही भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रवासी थे। प्रवासियों का महत्व जो है भारत के लिए और भारत का महत्व प्रवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा रहा है। एक तो भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत के विज्ञान, तकनीकी और भारत की जो पूरी सभ्यता है उसके ये राजदूत हैं। उसके साथ साथ वो विदेश में भारत का नाम ऊंचा करने में सक्रिय है, उनका योगदान जो है बहुत ही मौलिक है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस ऐसा है जब दोनों मिलकर एक दूसरे की उपलब्धियां जो है उसको मनाते हैं। ये उत्सव है हमारी उपलब्धियों का और आगे का रास्ता जो है किस तरह से हम तय करें उसके बारे में सोचने का।
आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत का लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में बसा हुआ है।
हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं और इन सबके साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है।
प्रधानमंत्री ने जैसा कि गिरमिटिया समुदाय की आज चर्चा की, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों की चर्चा की और अब हम देखते हैं कि जो विरासत गिरमिटिया श्रमिकों की थी वो आज एक पूरी पीढ़ी के साथ प्रवास के एक बहुत बड़े तंत्र के रूप में पूरी दुनिया भर में बढ़ती गई है। तो किस तरह से न सिर्फ गिरमिटिया बल्कि और तरह से भारत का प्रवास पूरी दुनिया में होने से भारत की एक उपस्थिति पूरी दुनिया में और संस्कृति के स्तर पर और विरासत के स्तर पर पहुंची है, जिससे कि जो हमारा डायस्पोरा है उसने एक पूरी भूमिका निभाई है भारत की पहचान को पूरी दुनिया में जतलाने के लिए।
देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, भारत का सदियों से पूर्व के राष्ट्रों से जापान तक और पश्चिम में ग्रीस, रोम, बैक्ट्रिया, पर्शिया, इजिप्त, इन सब इलाकों से बहुत पहले से संपर्क था। जब ब्रिटिश राज्यकर्ता यहाँ आ गए, उन्होंने काफी हद तक इस देश की संस्कृति पे आघात किया। ये जो गिरमिटिया थे वो एक तरह से पहले जो गुलाम थे, 19वीं सदी में गुलाम का जो कानून था वो पूरा अवैध घोषित किया गया। उसके बाद गिरमिटिया जो है उनको यहाँ से करीबन उस समय 2 मिलियन से ज्यादा हमारे लोग जो है सुदूर प्रांतों तक, मतलब आज ट्रिनिडाड टोबैगो हो, जमैका हो, या फिर फिजी हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे देशों में हमारे लोगों को लिया जाया गया और उनको बताया गया कि आप वहां सोने की खान में काम करेंगे। हालांकि उनसे उनकी बड़ा बड़ा शोषण हुआ, उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। हमारे भारतीय लोगों की ये खासियत है कि वो बहुत ही अनुशासन का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं और शिक्षा को महत्व देते हैं। इसके होते हुए हमारे लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाया है, इसलिए आज इन देशों में भारत वंश के लोगों ने जो है वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में अपना भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है।
ओडिशा में आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में हमारे संवाददाता प्रकाश दास ने इस सम्मेलन में भागीदारी निभा रहे लोगों से बातचीत की।
नमस्ते, मेरा नाम दिव्यता भट्ट है और मैं US में रहती हूँ लेकिन गुजराती हूँ, अहमदाबाद से। PBD का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे देशों से लोग आए हैं तो सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो अभी भारत का बहुत रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है अभी तो दुनिया में, और इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही, तो ऐसे ही लाइक वी शुड ऑल्सो शेयर टू एवरीवन दैट लाइक हाउ रिच भारत history is and culture is, and we should continue to like share about the culture.
नमस्ते, मेरा नाम सोनल भट्ट है और मैं वैसे भारत और अमेरिका के बीच में रहती हूँ, मतलब तो आधा इधर आधा उधर, पर मैं PBD के लिए मेरा ये पहला अनुभव है। बहुत बार सुना था उसके बारे में पर इस बार इसका मुझे लगा कि डबल जो कहते हैं आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ये इस बार उड़ीसा में है, तो जैसे ये PBD का तो जो अपना एक अलग एक आनंद है वो तो है ही, उड़ीसा का साथ में देखने का जो एक एक अलग जो बेनिफिट है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। इस बार इतना कुछ, मतलब पूरा दिन आप निकाल सकते हो इतना कुछ उसमें जानने के लिए, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, तो ये PBD के साथ साथ हम ये सब भी हमको मिल रहा है, तो हम उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं।
इस बार विकसित भारत में भारतीय प्रवासियों के योगदान को विषय के रूप में रखा गया है, तो विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था में योगदान पर बात करना बहुत अहम है, और इस मामले में हम देखें तो प्रधानमंत्री ने जैसा कि चर्चा भी की कि हम जिस तरह से अर्थव्यवस्था की पायदान में लगातार छलांग लगाते जा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय प्रवासियों की क्या इसमें भूमिका हो सकती है, और साथ में जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया कि मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय अगर प्रचारित करते हैं, उसमें अपनी भूमिका को निभाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है आने वाले समय में। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो स्थानीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान, उनकी ब्रांडिंग, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और कैसे भारत के अर्थव्यवस्था में इस तरह से अपना प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं?
बहुत सवाल सही आपने पूछा। एक तो व्यापार भारत का जो है कॉमर्स, उसको बढ़ाने में उनकी सहायता बहुत हो सकती है। उन देशों में भारत के उत्पादों को लाना, उसका प्रचार प्रसार करना, और वहाँ का और भारत का जो है संबंध, आयात और निर्यात का संबंध है बढ़ाना। दूसरी बात है निवेश की। भारत आज विश्व में बड़े अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी से प्रगति करने वाला देश है, तो यहाँ पर हमारे देश में आज भी निवेश की बहुत आवश्यकता है, और हमारे विदेश में जो प्रवासी रह रहे हैं उनके पास काफी अधिक मात्रा में आर्थिक जो है संसाधन उपलब्ध है, तो उसमें वो सहायता कर सकते हैं। तीसरी बात जो है मैं कहूँगा तकनीकी। आज विश्व जो है AI और रोबोटिक्स और अन्य तकनीकी की बात कर रही है, ऐसे में हमारे प्रवासी जो है अच्छे स्थानों पर वहाँ बैठे हुए हैं, वे भारत में तकनीकी ला सकते हैं। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अच्छे उद्योग जो है, बड़े उद्योग, उनको भारत में लाने की चेष्टा भी करनी चाहिए, और वो कुछ हद तक हो रहा है लेकिन वो बड़े पैमाने पे हो सकता है, और इन सब का हमारे विकसित भारत या मेड इन इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।
ज्ञानेश्वर जी, पूरी दुनिया में भारत अलग तरह से अपनी आवाज को अब रख रहा है। जैसे ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो उसकी एक प्रमुख आवाज और उनके मुद्दों को सामने रखने में भारत एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। इसी तरह से अगर हम अन्य मसलों की बात करें तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का जो मसला है, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काफी संवेदनशील और बड़े मुद्दे हैं, क्या प्रवासी भारतीयों की इसमें कोई भूमिका हो सकती है जिससे कि भारत एक सशक्त आवाज के रूप में और एक अपनी बढ़ती लीडरशिप के रूप में अपनी पहचान को और ज्यादा आगे बढ़ाएं? तो ऐसे में प्रवासी भारतीयों की इस मामले में भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
अमेरिका की हम बात लेते हैं तो वहां दो तरह के भारतीय रहते हैं, जो भारतीय मूल के है लेकिन जिन्होंने वहां की नागरिकता का स्वीकार कर लिया है, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो भारत के लोग हैं, भारतीय नागरिकता है और वहां कार्य कर रहे हैं और काफी समय से वहां उनका वास्तव्य है। तो हमारा जो सीधा प्रभाव रहता है वो हमारे नागरिकों पे रहता है, लेकिन आज अमेरिका में देखिए इतने सारे सीनेटर्स और कांग्रेसमैन भारतीय वंश के हैं। जब हमारा न्यूक्लियर डील हुआ, सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ, तो हमारे वहां के जनता ने, जो वहां के नागरिक है, उन्होंने बहुत अहम भूमिका उसमें निभाई है। ये एक उदाहरण हो गया। दुनिया के, जिसको हम कहते हैं कि संसद, दुनिया के अलग अलग संसद भवन में भारतीय मूल के 250 से ज्यादा सांसद बैठे हुए हैं। वो जरूर वहां पर, वहां की नीति पर अपनी तरफ से प्रभाव डालते हैं और भारत के संबंध बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जहां से व्यक्ति आया हुआ है वहां के अपने मूल पे, वो जरूर कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं हम रिटर्न बैक, योगदान जो है अपने देश के लिए करना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट तरीके से या ओपनली नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे नागरिक नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से करते हैं इसलिए क्योंकि भारत के प्रति उनको आदर, सम्मान और प्रेम की भावना उनके मन में रहते हैं, तो अपने हित की बातें जो है अक्सर उठाते हैं। ये आप इंग्लैंड में भी देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, और चाहे वो फिजी हो या ट्रिनिडाड और टोबैगो हो, वहां पर आप देखेंगे कि भारत के हितों की रक्षा करने के लिए वहां के स्थानीय लोग भी बहुत सक्रिय हैं।
अभी हमने शुरुआत में सांस्कृतिक दूतों यानी कल्चरल एम्बेसडर के बात की, जिसका प्रधानमंत्री ने, जिसकी संज्ञा दी है भारतीय प्रवासियों को, क्योंकि आप पूर्व राजदूत रहे हैं, तो हम आपके अनुभव से भी जानना चाहेंगे कि जो सॉफ्ट पावर होती है वो किस तरह से एक तरह से कूटनीति में बड़ी भूमिका निभाती है, और ऐसे में जो भारत का डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो इस सॉफ्ट पावर को और ज्यादा सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं?
ये जो सांस्कृतिक राजदूत की बात है वो बहुत सही है। जब एक भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है तो अपने साथ यहाँ की खाद्य संस्कृति ले जाता है, यहाँ के पहनावे की संस्कृति वो ले जाता है, यहाँ की जो परिवार रचना है और उसमें आपस में स्नेह भाव जो है उसके प्रति जो विचार है वो ले जाता है। तो एक तरह से कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो जाता ही है, उसके साथ साथ पूरे अपने संस्कारों का एक बहुत बड़ा जो है, मैं कहूंगा, विरासत अपने साथ ले जाता है। तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रचार और प्रसार में होता है। आज देखिए भारत की जो क्विजीन है, मैं न्यूयॉर्क में था तो मैंने देखा कि न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के बीच ही करीबन 200 भारतीय रेस्टोरेंट है। न्यूजर्सी में नियमित रूप से भारतीय जो हमारे फिल्म्स है, मूवीज है, वो दिखाई जाती है। वहां के टाइम स्क्वायर में हर साल बहुत बड़ा दिवाली महोत्सव हो जाता है। तो ये जो बातें हैं, वहां के रहने वाले अन्य जो लोग हैं वो भारत की संस्कृति को स्पर्श कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हमारा डायस्पोरा जो है या प्रवासी जो है वो आज भी कर रहे हैं। आगे के आने वाले दिनों में भारत का नाट्य, भारत का संगीत, भारत की लोक कलाएं, भारत के हस्तकलाएं, इनका और प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि इसमें कला के साथ साथ व्यापार के भी अवसर जो है भारतीय लोगों को, विशेषकर पिछड़े हुए लोगों को प्राप्त हो जाए।
जहाँ एक तरफ भारत की आबादी 1.5 अरब तक पहुंच रही है, वहीं हम देखें तो दूसरे देशों में भी भारतीय जो प्रवासी हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, और अगर हमें पूरी तरह से इस क्षमता का फायदा उठाना है और अपने देश में हम एक तरफ अपने जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय प्रवासियों के हम मजबूती और उनकी संख्या का भी लाभ उठाते हुए विश्व में किस तरह से कूटनीतिक स्तर पर और अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन के अवसर पर इस बात पर चर्चा करना। और हमारी भी यही कोशिश थी कि इस चर्चा के माध्यम से हम भारतीय प्रवासियों की भारत में भूमिका पर आपको विचार सुनवाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्ञानेश्वर मुले जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए।
धन्यवाद कमल जी।
अभी आप सुन रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व और भारत की प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।